हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 36 एंड 37। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कमशं, तस्मै सुभद्र शवसि नमो नमः। किरात होण द्रपुलिन्द्रपुर्कषा, आभीरशुंभा यवनाखसादय, येनी च पापा यदपाशयाशया, शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेश्वे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय, तत्थाम वृन्दावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गेनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो न पर नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जैसा कि हमने पहले पढ़ा श्लोक नंबर 34 में, जिसमें शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि सारे वेदों का निष्कर्ष क्या है, यही है धर्म की सर्वोच्च सिद्धि क्या है कि जीव वह कार्य करे जिससे भगवान के लिए उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। भगवान ब्रह्म कार्तिकेन तिरन वीक्षा मनीषया यदध्यवसत कूटस्थो रतिर आत्मना यतो भवेत। कि ब्रह्मा जी ने तीन बार वेदों का अध्ययन किया और उससे निष्कर्ष क्या निकाला, पहले कंक्लूजन निकाला कि वास्तव में जो काम करने से भगवान में रति उत्पन्न होती है वही सबसे समस्त वेदों का निचोड़ यही है, वही वेद का सार है जिससे कृष्ण के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। तो दूसरी दफा भी यही कंक्लूजन निकला, तीसरी दफा भी। बताने का अर्थ ये है कि कार्य मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे भगवान के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। और भगवान तो हर जगह पर है, जैसे 35 में बताया भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्ये बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षण अनुपमापक है। कि भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, तो जीव को बुद्धि की सहायता लेकर प्रत्येक वस्तु में भगवान का अनुभव करना चाहिए और कल्पना करनी चाहिए कि भगवान मेरे साथ, मतलब बुद्धि से ही सोचना चाहिए। शास्त्रों में तो भगवान का हर जगह वर्णन है, वैसे भौतिक जगत में भी किसी भी जीवित व्यक्ति को देखकर, वस्तु को देखकर इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इस क्रिएशन का कोई सृष्टिकर्ता है, क्रिएटर है, और वह कौन है, वो भगवान है। और उसी भगवान के विषय में हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए। जब निष्कर्ष निकाल दिया कि उसके लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आज फाइनल मनुष्य जीवन का उद्देश्य कि जीव को क्या करना चाहिए जिससे हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो, क्योंकि प्रेम उत्पन्न होना ही वास्तविक लक्ष्य है। इसके अलावा जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, कृष्ण के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, और उसके लिए क्या करना चाहिए, आइए आज हम सुखदेव गोस्वामी का फाइनल डिसीजन सुनते हैं। वे कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान्नाम। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान्नाम। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान्नाम। यहाँ पर जो अंतिम शब्द है वो है नृणाम। नृणाम यानी मनुष्य। मनुष्यों को ये जो वास्तविक जो लक्ष्य है जीवन का, कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न करना, ये केवल मनुष्य योनि में संभव है। वैसे तो भगवान ने यहाँ पर 84 लाख योनियां बनाई हैं, परंतु उनका काम क्या है? केवल आहार निद्रा भय मैथुन। किसी भी कुत्ते को आप पूरा जीवन सिखाते रहो भगवान से प्यार करो, उसको समझ में नहीं आएगी बात, उसके सामने हड्डी आएगी, वो खाना शुरू हो जाएगा। मतलब उसको कभी भी ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमें पहले भगवान को भोग ऑफर करना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। उसको भगवान ने ऐसी बुद्धि नहीं प्रोवाइड की है, क्योंकि इसने पिछले जन्म में ऐसे कार्य किए थे कि उसको कुत्ता बनना पड़ा। लेकिन जो भी जिस तरह से दूसरी योनियां हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त ही नहीं होती है कि वो भगवान की भक्ति कर सके। लेकिन जब किसी जीव आत्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है, तो यह मनुष्य शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, और इस मनुष्य जीवन में जीव को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो गई है कि वो भगवान की भक्ति कर सकता है। लेकिन इस मनुष्य, यहाँ पर ये भी देखना चाहिए, मनुष्य जीवन भी 4 लाख किस्म का होता है। कुछ तो आदिवासी होते हैं जो जंगल में रहते हैं, उनको पता नहीं है किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से कपड़े वस्त्र पहनने चाहिए, किस तरह से लाइफ को है ना अच्छे तरीके से बिताना चाहिए, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, उनको नहीं पता। कुछ तो ऐसे जगहों पर जन्म लेते हैं जैसे चाइना, रशिया, वो भगवान को मानते ही नहीं है, तो उन वो भी भगवान के विषय में श्रवण करने में इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन जब किसी जीव को ऐसी जगह पर मनुष्य जीवन प्राप्त होता है जहां पर उसे आसानी से भक्ति प्राप्त होती है, आसानी से भगवान के मंदिर जा सकता है, गुरु प्राप्त होते हैं, भगवान के विषय में श्रवण कर सकता है, भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है, भगवान को समझने का प्रयास कर सकता है, शास्त्रों को अध्ययन कर सकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य होता है जीव का कि उसे भगवान के साथ संपर्क करने का अवसर प्राप्त होता है। तो अगर किसी के जीवन में यह अवसर उसे प्राप्त हो जाता है, तो समझो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। और यही वास्तविक मनुष्य, यहाँ पर जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया गया है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया गया है, वो क्या है? तस्मात् सर्वात्मना राजन। सर्वात्मना का मतलब होता है, क्योंकि भगवान जो है प्रत्येक जीव के आत्मा है, प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, और वो कौन है? हरि, वो भगवान हरि, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो उसी को ही स्मरण करना है, उसी के लिए हृदय में उत्प्रेम उत्पन्न करना है, तो किस समय करना है? सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सब समय, सब जगह, सब परिस्थिति में, सब टाइम में, हर वक्त जो है वो क्या करना है? एक तो सब समय और सर्वदा। सर्वदा मतलब कि कोई भी सिचुएशन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, कोई भी दिन हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, थर्सडे हो, पहली तारीख हो, दूसरी तारीख हो, तीसरी तारीख हो, कभी भी हर समय और हर जगह, यानी 24 आवर्स। हर जगह मतलब सर्वत्र मतलब हर जगह। ऐसा नहीं है कि भगवान को, कुछ लोग होते हैं मंदिर में जाते खाली भगवान उसी समय याद आता है, मंदिर से बाहर निकलते भगवान भूल जाता है। आप मंदिर में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, अफ्रीका में हो, कहीं पर भी हो, हर जगह, हर परिस्थिति में, हर स्थान पर, हर सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मुख्य बात जो सबसे पहले जो बता रहे हैं वो है श्रोतव्य, वो श्रवण करना चाहिए हर टाइम पर, भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। ये जो कान है ना, उनको डेडिकेट कर देना चाहिए भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए। कान को सदैव भगवान के विषय में सुनाना चाहिए, और जिह्वा को सदैव भगवान के विषय में बोलना चाहिए। ये दो काम बताए जीवन में, मनुष्य जीवन को सार्थक यदि करना है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, च का मतलब होता है इसके अलावा, जो नवदा भक्ति के अंग है, सुनो सबसे मुख्य है, श्रवण करो, उसके बाद कीर्तन करो और उसके बाद क्या है स्मर्तव्य, भगवान को स्मरण करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के साथ कोई भी आदान प्रदान करो प्रेम का, भगवान को भोग लगाओ, भगवान की आरती करो। लेकिन सबसे मुख्य क्या है, श्रोतव्य कीर्तितव्य, श्रवण और कीर्तन, ये भगवान राम, यही जीव का वास्तविक, मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य यही है कि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। और उसका सही तरीका क्या है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना और भगवान के विषय में श्रवण करना। हम जब जब भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, उसी से हमारे जो भगवान के प्रति आकर्षण है वो उत्पन्न होता है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है, तो वह मानव जो है वो भगवान के प्रति प्रेम जो है उसका खत्म होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे हम भौतिक विषयों में सुनते जाते हैं, तो भौतिक विषयों के, क्योंकि कान है तो वो सुनते रहेंगे, और जैसे जैसे भौतिक विषयों में सुनेंगे तो भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षण होगा। लेकिन जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, ब्रह्मा जी ने क्या निर्णय दिया, वही कार्य करना चाहिए जिससे भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो, रति जो है वो भगवान में उत्पन्न हो। और वो है, स्टार्ट होता है श्रवण करने से। जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तो भगवान के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, भगवान के विषय में सुनना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना। अनुवाद देखिए, हे राजन, अतीव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे थे श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात अर्थात अतैव शब्द से प्रारंभ करते हैं। तस्मात सर्वात्मनारा, अतैव मतलब इसलिए, किस लिए, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। अब भक्ति योग के अतिरिक्त कोई और उपाय है ही नहीं, तो फिर भक्ति योग ही करना चाहिए, इसलिए बताया गया, क्योंकि कोई उपाय दूसरा नहीं है। तस्मात इसलिए सर्वात्मना राजन, हरि सर्वत्र सर्वदा, इसलिए हर समय हर जगह और हर स्थिति में भगवान के प्रति श्रवण करना चाहिए। इसलिए यहाँ प्रश्न प्रोपाल जी बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी ने अतैव लिखा है तस्मात। आगे श्री प्रोपाल जी कहते हैं, भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों तथा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये नवो प्रामाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि के द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकता है। ये जो नवदा भक्ति है उसमें एक में भी यदि हम पूरी तरह से निष्ठा से रहेंगे तो वांछित फल क्या है, भगवान के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न होना, वो हो जाएगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं किंतु, किंतु का मतलब है आप कुछ स्पेशल मोड़ दे रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, किंतु इन नौ विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये श्रील प्रभुपाद जी के शब्द हैं और यही वास्तविकता है। और वो क्या है कि श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं होती। जब तक जीव श्रवण नहीं करेगा कीर्तन नहीं कर सकता। जिसने कभी सुना ही नहीं वो भला भगवान का क्या गुणगान करेगा। जो श्रवण नहीं करेगा, जिसने भगवान के विषय में सुना ही नहीं, वो भगवान को क्या स्मरण करेगा, क्या सेवन करेगा, क्या भगवान की आराधना करेगा। तो सबसे मुख्य क्या है, पर्याप्त विधि समुचित विधि के द्वारा श्रवण करना। अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती है। केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक वांग्मय भरा पड़ा है। क्या सुनना चाहिए, वैदिक वांग्मय, किसने बताया? जिसे वेद व्यास, जिसे भगवान के शक्ति आविश अवतार ने संकलन किया है। चूंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतः उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान ही स्रोत हैं, भगवान ही आपको आनंद प्रदान करेंगे, भगवान ही हमारे जीवन को सफल करकर भगवत धाम लेके जाएंगे। तो भगवान का कीर्तन, भगवान के विषय में श्रवण सर्वत्र और सर्वदा होना चाहिए। यह मनुष्य जन्म का विशेष कर्तव्य है। मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या है? भगवान के विषय में श्रवण करना और भगवान के पवित्र नामों का जप करना। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है, तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा क्रिकेट सुनने में का अभ्यस्त बन जाता है। फिर वो कूड़ा क्रिकेट सुनेगा। जो भगवान के विषय में आध्यात्मिक बात नहीं सुनता है, वो इस भौतिक जगत का कचरा ही सुनेगा। कोई यंत्र बुरा नहीं है। यंत्र मतलब आज हम लोग सुनते हैं, हैंड फ्री से कुछ भी सुनते हैं, मोबाइल में म्यूजिक में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्या सुन सकते हैं। हमारे पास सीडीज होती हैं और एलईडी में कुछ भी सुनने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है। और कोई यंत्र बुरा नहीं है, यानी कि उसके अंदर बुराई नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है। अभी उसी भौतिक वस्तु, भौतिक ना, ये जो मोबाइल है या इंटरनेट है, कुछ भी, हम भौतिक वस्तुओं के बारे में सुनते हैं। लेकिन जब हम भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनते हैं तो भौतिक आकर्षण उत्पन्न होता है, लेकिन उन्हीं के द्वारा यदि हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो हमारा उद्धार होता है। यंत्र बुरा नहीं है, हमारी इच्छा बुरी होती है जो हमें भगवान के विषय में ना बल्कि भौतिक विषयों में सुनने के लिए प्रेरित करती है। यही सबसे जीव की सबसे बड़ी गंदगी है, हृदय की सबसे बड़ी अशुद्धता है कि भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होता, हृदय में भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है। इसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास लाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, सुनना जरूरी है, जरूर हमें सुनना चाहिए। और क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं, मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता है। श्रवण किसका करना? गीता और भागवतम को। भागवतम और गीता को सुनाने के लिए हम किसी गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली को तो नहीं इकट्ठा करेंगे ना। तो उसके लिए क्या है? निर्णाम। ये मनुष्यों के लिए भगवान ने बनाए हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चरित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा। सुनने के लिए कानों को रिजर्व्ड करके रख देना चाहिए कि इन कानों के द्वारा मुझे भगवान के विषय में श्रवण करना है। तो फिर यदि उन्हीं के विषय में सुनेंगे, भगवान के विषय में, तो फिर भौतिक अपवित्र व्यक्तियों के सुनने के लिए तो अवसर ही नहीं मिलेगा। तो जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं ये भौतिक वस्तु और व्यक्ति, उनके विषय में सुनते हैं, उसी के कारण तो जीव गिर रहा है, उसी के कारण जीव का पतन हो रहा है। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। अब यहां श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो श्रवण करेगा वही कीर्तन कर सकेगा। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है और तब वह भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। क्यों करेगा वह भगवान का कीर्तन? क्योंकि उसने श्रवण किया है। वो भगवान के विषय में कब बता सकेगा? क्योंकि उसने भगवान के विषय में सुना है। वो भगवान से प्रेम करता है, तभी तो भगवान का गुणगान करता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने या था, यामुना आचार्य, माधव आचार्य, चैतन्य सरस्वती ठाकुर या कि अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र।
भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी। सदैव भगवान संबंधी कार्य करना ही सनातन धर्म है। भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतएव भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों के द्वारा उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं संसार में सब लोग चाहते हैं शांति उत्पन्न हो, आनंद उत्पन्न हो। वो तभी हो सकता है जब संसार में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हो, भगवान की लीलाओं का गुणगान हो। और आगे श्री प्रभुपाद जी, च शब्द भक्ति योग की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। च मना ये जो बताए श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, च मन स्मरण, पाद सेवनम, वंदनम, ये सब भगवान के विषय में यदि हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सफल होगा। और वो स्टार्ट होता है श्रवण करने से, और जैसे जैसे हम श्रवण करते जाते हैं तो नवदा भक्ति की सारी विधियां, क्योंकि श्रवण करेंगे तो कीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे तो भगवान का स्मरण करेंगे, जब स्मरण करेंगे तो भगवान से प्रेम करेंगे, और जब भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान की सेवा करेंगे, और जब वही प्रेम भगवान के अंदर रति के सूरत में, भाव के सूरत में उत्पन्न हो जाएगा तो जीवन को समर्पित करके भगवान के चरणों का ही आश्रय लेंगे। यही है नवधा भक्ति, जो कि श्रवण से ही स्टार्ट होती है। तो क्या करना चाहिए, अंतिम कंक्लूजन करते हुए अंतिम श्लोक में वे कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और इस श्रवण और कीर्तन का वास्तविक फल है ये। वे कहते हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम् कथामृतम् श्रवण पुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये जो पीते हैं भगवत आत्मना सताम, आत्मना सताम का मतलब होता है सताम यानी भक्त, वो भगवान जो भक्तों की आत्मा है, भक्तों को बहुत ज्यादा प्यारे हैं, भक्तों के लिए जो जीवन धन है, भक्त जिनको अपना जीवन समझते हैं, प्राण समझते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की कथामृतम, कथा की अमृत को जो पीते हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कथा को अमृत बताया है। वास्तव में इस संसार में कथा ही अमृत है। अमृत का मतलब है कि वो वस्तु जिसके सेवन करने से जीव के समस्त रोगों की समाप्ति हो जाए, है ना। समस्त रोगों की समाप्ति केवल कथा के द्वारा ही हो सकती है। जब जीव भगवान की कथा को श्रवण करता है तो उसका कल्याण होना, संसार में हर कोई चाहता है ना कि मेरे दुख समाप्त हो, मेरे रोग समाप्त हो, मेरे कष्ट समाप्त हो, मेरी टेंशन खत्म हो, मेरा प्रॉब्लम्स खत्म हो, तो केवल कथा अमृत के द्वारा। और कथा अमृत को कैसे, श्रवण पुटेषु संभृतम। पुटेषु कहते हैं जो धोने होते हैं ना, श्रवण पुटेषु यानी कान के जो छेद हैं इनको धोना बोलते हैं। जैसे पीते हैं ना, कोई चीज पीने के लिए कोई कंटेनर होना चाहिए, कप होना चाहिए, गिलास होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं धोना। तो ये धोना जो है कान का, उसको पूरा संभृतम परिपूरित मात्रा से कंटिन्यूस कानों के अंदर भगवान की कथाओं को डालते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। जिस तरह से हर वस्तु हम मुख से पीते हैं ना, लेकिन ये कथा ऐसी है जो कान के द्वारा पी जाती है। और जब जो कथा अमृत पीते हैं उससे क्या लाभ होता है, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्। विषय विदूषिता अनादिकाल से विषय भोग के कारण हृदय अशुद्ध हो गया है। हृदय की अशुद्धता क्या है कि भगवान के अंदर हृदय लगता नहीं है, भौतिक वस्तुओं का आकर्षण समाप्त नहीं होता है और जैसे जैसे भौतिक भोगों की ओर आकर्षित होते रहते हैं मन और अशांत होता है। उन वस्तुओं को प्राप्त करके आनंदित होने का सोचते हैं, वही वस्तुएं आकर हमारे जीवन को और भी दुखी कर देती हैं। ये है जीव की सबसे बड़ी विडंबना और ये विदूषिता, यही विषय भोग की अशुद्धता, वो क्या हो जाती है? पुनन्ति। कैसे? जब जीव भगवान की कथाओं को अपने कानों के द्वारा सुनता है तो उससे हृदय पवित्र हो जाता है। कथा अमृत पीने से हृदय पवित्र हो जाता है और जब हृदय की लालसा समाप्त हो जाती है, भोगों की इच्छा समाप्त होती है, इंद्रिय तृप्ति की वासना समाप्त होती है, फिर क्या होता है? वे कहते हैं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। व्रजन्ति, फिर वो चला जाता है, प्राप्त करता है कब क्या चीज? चरण सरोरुहान्तिकम्। चरण सरो यानी भगवान के चरण कमलों के आश्रय को प्राप्त करता है, भगवान के चरण कमलों का वह दाम प्राप्त करता है जहां पर भगवान रहते हैं। केवल भगवान के धाम को प्राप्त करने से ही जीव का कल्याण होगा और ये कैसे होगा? कथा के द्वारा ही कृष्ण मिलेंगे। जैसे जैसे कथा को श्रवण करेंगे हृदय की मलिनता समाप्त होगी, हृदय की मलिनता समाप्त होगी, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और कृष्ण प्रेम उत्पन्न करना ही तो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि जीवन को क्या करना चाहिए, बस कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। सब कुछ इसी से होगा। जैसे जैसे कथा सुनते जाएंगे समस्त अपराध हृदय से समाप्त हो जाएंगे और जैसे जैसे समाप्त होते जाएंगे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। यही सुनाया उन्होंने परीक्षित महाराज को और यही किया परीक्षित महाराज ने। 7 दिन तक बैठे रहे और सुनते रहे भगवान की कथाओं को। जैसे जैसे भगवान की कथाओं को सुनते गए हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता गया और जैसे ही कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ 7 दिनों के बाद वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। इसी से वास्तविक कल्याण होगा। अनुवाद देखिए, जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को करण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। दूषित जीवन है, भौतिक वस्तुओं से आनंद लूं, मैं प्रभुत्व जताऊं, इसी के कारण सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत खास बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है वह उतना ही भगवान की भ्रामिक भौतिक शक्ति यानी माया द्वारा बंधता जाता है और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने की बजाय बढ़ते जाते हैं। जीव सोचता है भौतिक वस्तुओं का इंद्रिय तृप्ति के लिए विदोहन करता जाऊंगा और उतना ही जितना जितना भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, उनको भोगने का प्रयास करता है, उतना ही माया शक्ति के द्वारा बंध जाता है और कष्ट घटने की बजाय बढ़ जाते हैं। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं। इन सब वस्तुओं के लिए जीव को कठिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो वस्तुएं मनुष्य जीवन के लिए नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं, उनके लिए जीव को इतनी अधिक कठिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, क्या उसके लिए कोई मेहनत करता है? पीने के लिए पानी आवश्यक है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। खाने के लिए अन्न, जल और दूध जो आवश्यक है वो भगवान ने प्रचुर मात्रा में दे दिया है। उसके लिए पूरा जीवन कठिन संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके, पूर्ति के सारे साधन हैं और सही प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी मेहनत से भौतिक जीवन की जो आवश्यकताएं वो पूरी हो जाएंगी। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े अस्पताल उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े अस्पात यानी कि बहुत सारी यंत्रों को या एक्स्ट्रा चीजों के लिए बहुत ज्यादा जीवन शक्ति को खत्म करने की जरूरत नहीं है। जीवन के लिए जीवों को जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो, उसके लिए थोड़ा सा सादा जीवन गुजार के भगवान की कथा को सुनते 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 भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करके खत्म करना है जन्म मरण के चक्कर को, ना कि भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी कुत्ता बिल्ली और जानवरों की योनियों में आकर अपने जीवन को और भी कठिन करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता है। वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। आरामदेह हम सोचते हैं बड़ा सा बंगलो होगा, बड़ी गाड़ी होगी, ऐसे वाले रूम होंगे, ऐसा उसका करते 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 जीवन और भी दुखदायक हो जाता है। ये जो ज्यादा फैसिलिटीज में जो रहना शुरू कर देता है ना एक बार, फिर वो भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता, उसके लिए तपस्या करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सादा जीवन और शुद्ध विचार से ही जीवन आनंदमय बनता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत मुख्य बात बता रहे हैं कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है और वह यह है श्रीमद् भागवतम का ठीक से श्रवण करना। दूसरे कार्यों में अपने जीवन को इतना ज्यादा समाप्त कर अपने जीवन की अपने आयु की को वेस्ट करने के लिए ये मानव जीवन नहीं मिला है। मानव जीवन अपने वास्तविक लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए मिला है और उच्चतम चिंतन का क्या सुझाव दिया है? श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना। आगे कहते हैं, इस कलयुग के मनुष्यों के जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवतम उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। जीव आज भूल गया है कि मुझे किससे प्रेम करना है, मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मुझे किस प्रकार से अपने जीवन को सफल करना है, ये केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से ही जीव जान सकेगा। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृत की व्याख्या की है और यह संकेत किया है कि श्रीमद् भागवतम का अमृतमयी संदेश है। श्रीमद् भागवत भगवान का अमृतमयी संदेश है। श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य कृत्रिम प्रकृति पर प्रभुत्व जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। यही एकमात्र कार्य करने का है, क्या? श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना। आगे बता रहे हैं कि शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है, वास्तव में आनंद प्राप्त होता है। जब भक्त भगवान के विषय में श्रवण करता है, भगवान कहते हैं तुष्यंति चरमणति च, उसको उसी से आनंद होता है जब वो भगवान के विषय में सुनता है, उसी से आनंद प्राप्त होगा, उसी से संतुष्टि प्राप्त होगी। और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेश निश्चित ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को लुभाने वाले हैं। यहाँ पर श्री शुकदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम के कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्म ग्रह में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकता है। जैसे जैसे भगवान के विषय में सुनेंगे तो क्या होगा, वृजन्ति, भगवान का धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात भगवान की दिव्य कथा का पर्याप्त श्रवण करने से भगवान के निर्विशेष विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना मनुष्य का भौतिक कल्मश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। साफ साफ बताया यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने, पिबंती ये भगवत आत्मना सताम कथा अमृतम श्रवण पुटेशु समृता। खाली आपको भगवान की कथाओं को पीना है, श्रवण करना, उससे क्या होगा, पुनंतिते विषय विदूषित शयम, सारे कलमश समाप्त हो जाएंगे, हृदय पवित्र हो जाएगा और जो गंतव्य बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होने वाला है, व्रजंती तत्चरण सरोरुहांतिकम, भगवान के चरण कमल वाला धाम प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होने वाली गति और बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसे बताया यहाँ पर बताया गया कि यदि अभ्यासकर्ता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कलम से शुद्ध नहीं हो पाता, अगर श्रवण करता है, नाम जप करता है और फिर भी उसके हृदय से भौतिक वासना समाप्त नहीं हो रही है, तो उसे छत्म भक्त समझना चाहिए, वो केवल दिखावा कर रहा है। यदि हम सिंसियरली सुनेंगे, सिंसियरली नाम जप करेंगे तो भक्ति से वैराग्य उत्पन्न होगा ही होगा, भौतिक वासनाएं समाप्त होंगी ही होंगी, और अगर नहीं हो रही हैं तो छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। जीव को सिंसियर होना चाहिए भगवान की कथाओं के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, भगवान के प्रेम के प्रति। जितना जितना हम सिंसियरली और सीरियसली भगवान के सम्मुख होंगे, उतना ही भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे, उतना ही हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा और भौतिक आकर्षण जो है वो समाप्त होगा। तो हमें अधिक से अधिक भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए क्या करना है, भगवान की कथा को श्रवण करना है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय सिकंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि भगवान की कथा सुनना ही अपने आप में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि सुनने से क्या होगा, कुछ करना होना, करना भी चाहिए ना। करना क्या है, सुनना ही करना है, सुनना ही सबसे बड़ा कार्य है, यही फल है, यही गोल है, यही लक्ष्य है और यही भागवतम का निर्णय है, यही फाइनल डिसीजन दिया है सुखदेव गोस्वामी ने कि सुनेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, हृदय की लालसा समाप्त होगी, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और यही कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना ही वास्तविक लक्ष्य है। क्योंकि जब प्रेम उत्पन्न होगा, भौतिक लालसा समाप्त होगी, तभी तो हम कृष्ण के धाम को प्राप्त करेंगे। व्रजन्ति यत् चरण सरोरुहांतिकम्, भगवान के चरण कमलों में, भगवत धाम में वापस जाने का केवल एक ही उपाय है, भगवान के विषय में श्रवण करते जाएं। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें सुनने का अवसर मिलता है, परंतु ये मेरी बहुत बड़ी नालायकी है कि मैं बहुत ही
कम समय निकाल पाती हूँ श्रीमद् भागवतम को आप सबको सुनाने के लिए। आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और एक ही विनती है कि कृपया भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं, अपनी साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।